एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जिसने न सिर्फ विज्ञान को बल्कि सच पूछिए तो दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को ही बदल दिया।
हाँ बिल्कुल,
हम बात कर रहे हैं चार्ल्स डार्विन की द वॉयज ऑफ द बीगल की।
एक बहुत ही मशहूर किताब।
बिल्कुल, और ये सिर्फ एक मतलब जहाज के सफर की कहानी नहीं है, है ना? ये तो उन ऑब्जर्वेशंस, उन सवालों का खजाना है जिसने आगे चलकर विकासवाद जैसे क्रांतिकारी सिद्धांत की जमीन तैयार की।
एकदम सही कहा। और कमाल की बात यह है कि ये किताब आज भी उतनी ही जरूरी है बल्कि शायद पहले से भी ज्यादा।
हाँ, कैसे?
देखिए, डार्विन की जो चीजों को बारीकी से देखने की कला थी, उनकी वो कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा, और सबसे अहम बात कि सबूत मिले तो पुरानी जमी जमाई बातों पर भी सवाल उठा दो।
हिम्मत चाहिए इसके लिए तो।
बिल्कुल, ये साहस, ये सब आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। ये किताब दिखाती है कि कैसे अगर आप धैर्य से चीजों को देखें, उनका अवलोकन करें, तो उससे दुनिया बदल देने वाले विचार भी पैदा हो सकते हैं।
और खासकर आज के जमाने में जब हम ये पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान, इन सब चीजों से जूझ रहे हैं, तो डार्विन का वो नजरिया, प्रकृति के उस जटिल जाल को समझने की कोशिश, वो हमें शायद कोई रास्ता दिखा सकता है।
सही बात है। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं इस किताब के लेखक से, चार्ल्स डार्विन। आपको पता है, हैरानी की बात है कि जब ये बीगल यात्रा शुरू हुई थी दिसंबर 1831 में, वो सिर्फ 22 साल के थे।
सोचिए,
22 साल का लड़का और 5 साल लंबी समुद्री यात्रा पर।
हाँ, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए तो थे धर्मशास्त्र पढ़ने, पर उनका असली मन तो लगता था प्रकृति में, पत्थर, पौधे, जीव जंतु।
हाँ, वो नमूने इकट्ठा करने का जुनून था उनमें।
बिल्कुल।
हाँ, और वो सिर्फ ऐसे ही नहीं, ये चलो शौक है, उनमें कुछ खास बातें थीं जिन्होंने उन्हें इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए एकदम सही उम्मीदवार बनाया। एक तो उन्हें अच्छे गुरु मिले थे।
अच्छा।
हाँ, जैसे जॉन स्टीवंस हेंस्लो, जो वनस्पति शास्त्री थे, और भूविज्ञानी एडम सेडविक। इन लोगों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना, उन्हें प्रोत्साहित किया। फिर उनमें चीजों को बहुत बहुत बारीकी से देखने की गजब की क्षमता थी, और जिज्ञासा तो ऐसी कि कभी खत्म ही ना हो। ऐसा क्यों है, ये सवाल उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता था।
अच्छा।
और एक और चीज, वो अपने साथ एक किताब लेकर गए थे, चार्ल्स लायल की प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। ये उस वक्त की बड़ी क्रांतिकारी किताब थी।
हाँ, मैंने सुना इसके बारे में।
इसने उन्हें सिखाया कि पृथ्वी बहुत बहुत पुरानी है और ये धीरे धीरे बदलती है। ये सोच उनके लिए आगे चलकर बहुत बहुत अहम साबित हुई।
सही।
और हाँ, कम उम्र के बावजूद उनमें वो हिम्मत थी कि वो उस जमाने की जो स्थापित वैज्ञानिक और धार्मिक मान्यताएं थीं, उन पर सवाल उठा सकें, अगर उनके देखे हुए तथ्य कुछ और कह रहे हों तो।
वो पीछे नहीं हटते थे।
जी
बिल्कुल। और उनकी वो आदत, हर चीज के नोट्स बनाना, सब कुछ सहेज कर रखना, इसी वजह से ये यात्रा सिर्फ एक समुद्री सफर नहीं रही, ये एक जबरदस्त वैज्ञानिक मिशन बन गई। ये किताब एक तरह से उनके खुद के विचारों के बदलने का भी दस्तावेज है।
क्या बात है। तो ये किताब आखिर है क्या? मतलब जैसा हमने कहा, ये कोई मामूली सफरनामा नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये एक वैज्ञानिक डायरी जैसी है। डार्विन रोज क्या देखते थे, क्या सोचते थे, किस बात पर हैरान होते थे, सब इसमें दर्ज है।
हाँ, ये उनकी बौद्धिक यात्रा का नक्शा है, आप कह सकते हैं।
बिल्कुल। और ये इतिहास की शायद सबसे अहम वैज्ञानिक समुद्री यात्राओं में से एक का, मतलब लाइव कवरेज जैसा है।
हाँ बिल्कुल, वो हमें अपने साथ ले जाते हैं। सोचिए, ब्राजील के वो घने उमस भरे जंगल।
हाँ, इस पहाड़ों की ऊंचाइयां, और फिर वो अनोखे गैलापागोस द्वीप,
और फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया होते हुए वापस इंग्लैंड। वाह
वाह।
और इस पूरे लंबे सफर में उनके दिमाग में कुछ बहुत बड़े, कुछ क्रांतिकारी विचार शक्ल लेने लगते हैं।
जैसे कि
शायद सबसे अहम विचार जो उभरना शुरू होता है वो ये कि भाई, ये जो जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये स्थिर नहीं है।
अच्छा।
हाँ, बल्कि वे समय के साथ बदलती हैं, अपने माहौल के हिसाब से ढलती हैं, अनुकूलित होती हैं। और वो जो लायल की किताब थी, उससे प्रभावित होकर डार्विन ये भी गहराई से महसूस करने लगते हैं कि पृथ्वी का इतिहास जितना हम सोचते हैं उसे कहीं ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा लंबा है, लाखों करोड़ों साल का।
हाँ, ये डीप टाइम वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। और ये पहाड़ बनना, जमीन का उठना, ये सब भूगर्भीय प्रक्रियाएं धीरे धीरे लगातार चलती रहती हैं, और जीवन को धीरे धीरे बदलने के लिए इतना लंबा वक्त जरूरी भी था।
सही बात है।
वो इस पहेली से भी जूझते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के जीव क्यों मिलते हैं, मतलब बायोजोग्राफी।
हाँ, जैसे कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में क्यों,
बिल्कुल, या स्लॉथ सिर्फ अमेरिका में ही क्यों मिलते हैं। और वो प्रकृति में हर चीज के बीच एक गहरा कनेक्शन देखने लगते हैं, जीव, उनका खाना, उनका माहौल, यहाँ तक कि वहाँ की जमीन कैसी है, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है।
एक पूरा सिस्टम।
हाँ बिल्कुल, एक सिस्टम थिंकिंग। हालांकि उनका वो महान सिद्धांत ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वो तो इसके कई साल बाद छपा।
हाँ, वो तो बाद में आया,
लेकिन उसकी जड़ें, उसके बीज वो इसी यात्रा के अवलोकनों और सवालों में छुपे हैं। ये किताब दिखाती है कि कैसे अगर आप अपनी आंखों से कुछ देखते हैं तो वो सदियों पुरानी मान्यताओं को भी हिला सकता है।
बिल्कुल, चलिए अब इस कमाल की यात्रा के कुछ खास पड़ावों और खोजों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो यात्रा शुरू होती है इंग्लैंड से, और शुरू में तो डार्विन बेचारे समुद्री बीमारी से बड़े परेशान रहते हैं।
हाँ, वो काफी जूझते हैं उससे।
लेकिन जैसे ही जहाज केप वर्डे द्वीप पहुंचता है, उनका वो वैज्ञानिक दिमाग एकदम चालू हो जाता है।
अच्छा, वहाँ क्या देखा उन्होंने?
वहाँ उन्हें ज्वालामुखी चट्टानों में, वो भी समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर, समुद्री सीपियों के जीवाश्म मिलते हैं, फॉसिल्स।
अरे वाह, ऊंचाई पर?
हाँ, ये उनके लिए जैसे एक यूरेका मोमेंट था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि जमीन धीरे धीरे ऊपर उठ सकती है, और पृथ्वी वाकई बहुत पुरानी है, वो लयाल वाली बात सही साबित हो रही थी।
समझ गया।
फिर जहाज पहुंचता है ब्राजील, और वहां के वर्षा वन, उनकी वो बायोडायवर्सिटी, वो जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, डार्विन तो बस हैरान रह जाते हैं।
हाँ, वो लिखते हैं कि ये तो अराजकता में आनंद है, मतलब हर तरफ जीवन ही जीवन।
पर वहीं उनका सामना एक बहुत कड़वी सच्चाई से भी होता है, गुलामी।
हाँ, ये एक अहम पहलू है। वो अफ्रीकी गुलामों पर होते जुल्म देखकर अंदर तक हिल जाते हैं, और गुलामी के लिए उनके मन में गहरी नफरत पैदा हो जाती है जो जिंदगी भर उनके साथ रही।
यात्रा फिर दक्षिण की तरफ जाती है, और जहाज पहुंचता है अर्जेंटीना के पैटागोनिया, वो सूखे सपाट मैदान।
हाँ, और वहाँ डार्विन को मौका मिलता है स्थानीय चरवाहों के साथ घूमने का, जिन्हें गौचो कहते हैं।
और यहाँ उन्हें मिलता है जीवाश्मों का खजाना।
हाँ, जमीन में दबे हुए बड़े बड़े जानवरों के अवशेष, जैसे मेगाथीरियम, सोचिए हाथी जितना बड़ा स्लॉथ,
बापरे,
और ग्लाइप्टोडॉन, जैसे कोई गाड़ी जितनी बड़ी पीठ वाला आमडेलो।
अविश्वसनीय।
लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या थी इसमें?
सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ये जो विशाल विलुप्त जानवर थे, वो उसी इलाके में आज पाए जाने वाले छोटे स्लॉथ और आर्मेडिलो से काफी मिलते जुलते थे।
अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये देखकर डार्विन सोचने पर मजबूर हो गए। यहीं उनके दिमाग में वो सक्सेशन ऑफ टाइप्स, यानी प्रकारों का उत्तराधिकार वाला विचार आया।
मतलब?
मतलब ये कि शायद किसी जगह पर समय के साथ जो जीव रहते हैं वो आपस में संबंधित होते हैं। अतीत के जीव वर्तमान के जीवों के पूर्वज हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशारा था कि जीवन स्थिर नहीं है, ये बदलता है।
बात जम रही है। अब कहानी और रोमांचक होती है। बीगल पहुंचता है दक्षिण अमेरिका के एकदम दक्षिणी सिरे पर, टियरा डेल फ्यूगो।
हाँ, वो तूफानी, ठंडी, उजार सी जगह।
हाँ, यहाँ डार्विन की मुलाकात होती है फ्यूगियन आदिवासियों से, और शुरू में उनकी जीवन शैली देखकर डार्विन थोड़ा चौंकते हैं। उस समय की यूरोपियन सोच के हिसाब से उसे जंगलीपन समझ बैठते हैं।
हाँ, वो शुरुआती रिएक्शन था। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प कहानी है।
हाँ, वो तीन फ्यूगियन वाली।
बिल्कुल, जेमी बटन, यॉर्कमिंस्टर और फ्यूजिया बास्केट, जिन्हें बीगल के कैप्टन फिट्ज़रॉय अपनी पिछली यात्रा पर इंग्लैंड ले गए थे उन्हें सभ्य बनाने के इरादे से।
हाँ, और अब उन्हें वापस उनके लोगों के बीच छोड़ा जा रहा था। एक तरह का प्रयोग था ये।
और ये प्रयोग पूरी तरह फेल हो गया। इंग्लैंड में कुछ साल रहने के बाद भी वो अपने समाज में वापस घुलमिल नहीं पाए।
ओह,
इन पश्चिमीकृत फ्यूगियनों और उनके रिश्तेदारों के बीच का जो अंतर था, और इस पूरे सभ्यता वाले प्रयोग की नाकामी, इसने डार्विन को संस्कृति, सभ्यता और इस बात पर गहराई से सोचने पर मजबूर किया कि आखिर इंसान होने का मतलब क्या है। उन्हें ये एहसास हुआ कि ऊपर ऊपर के अंतर चाहे जितने हों, सभी मनुष्यों में एक बुनियादी चीज समान है, एक साझा मानवता है।
ये एक बहुत गहरी समझ थी। इसके बाद जहाज प्रशांत महासागर की ओर मुड़ता है और चिली पहुंचता है।
हाँ, और यहाँ वाल्डिविया शहर में डार्विन एक भयानक भूकंप का अनुभव करते हैं।
अपनी आंखों से देखते हैं।
हाँ,
अच्छा,
लाइव।
हाँ,
वो देखते हैं कि कैसे जमीन कई फुट ऊपर उठ गई, हमेशा के लिए। ये उनके लिए भूगर्भीय शक्तियों का एक लाइव डेमो था, एकदम साक्षात प्रमाण।
जबरदस्त। फिर वो एंडीज पर्वत को पार करते हैं।
हाँ, खच्चरों पर। एक और अविश्वसनीय काम। और सोचिए, पहाड़ों में हजारों फुट की ऊंचाई पर उन्हें फिर से क्या मिलता है?
समुद्री सीपियों के जीवाश्म।
बिल्कुल। और यहाँ तक कि पेड़ों के पत्थर बन चुके जंगल, पेट्रिफाइड फॉरेस्ट्स।
इतनी ऊंचाई पर
इसका क्या मतलब हो सकता है?
इसका सीधा मतलब था कि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ कभी समुद्र के नीचे थे। ये लायल के सिद्धांतों का एक और जबरदस्त सबूत था कि पृथ्वी पर धीरे धीरे कितने बड़े भूगर्भीय बदलाव होते रहते हैं। ये सारे अवलोकन उनके दिमाग में पृथ्वी के उस लंबे इतिहास और जीवन के विकास के लिए जरूरी समय वाले विचार को और मजबूत कर रहे थे।
और फिर आता है वो पड़ाव जिसका नाम डार्विन और विकासवाद के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया, गैलापागोस द्वीप समूह।
हाँ, इक्वाडोर के तट से दूर प्रशांत महासागर में फैले वो ज्वालामुखीय द्वीप जैसे दुनिया से बिल्कुल अलग थलग।
और वहाँ के जीव जंतु भी उतने ही अनोखे थे। बिल्कुल, ज्यादातर पक्षी, रेप्टाइल्स, पौधे ऐसे थे जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते थे, मतलब स्थानिक थे, एंडेमिक।
यहीं पर डार्विन की वो अवलोकन शक्ति अपने चरम पर पहुंचती है ना?
हाँ बिल्कुल। वो देखते हैं कि ये द्वीप समूह तो जैसे एक जीती जागती प्रयोगशाला है। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि अलग अलग द्वीपों पर जिनकी जमीन और जलवायु लगभग एक जैसी थी, फिर भी थोड़े थोड़े अलग किस्म के जीव रहते थे।
जैसे वो कछुए।
हाँ, द्वीप के गवर्नर ने उन्हें बताया कि वो किसी कछुए का खोल देखकर बता सकता है कि वो किस द्वीप का है, क्योंकि हर द्वीप के कछुओं के खोल का आकार थोड़ा अलग था।
कमाल है। और वो पक्षी फिंच।
हाँ, वो फिंच। डार्विन ने कई तरह के छोटे पक्षियों के नमूने इकट्ठे किए। बाद में इंग्लैंड में पता चला कि वो असल में फिंच की कई अलग अलग लेकिन आपस में जुड़ी हुई प्रजातियां हैं।
और सबसे खास बात, उनकी चोंच।
हाँ, हर द्वीप की फिंच की चोंच का आकार वहां मिलने वाले भोजन के हिसाब से अलग अलग था। किसी की चोंच मोटी थी बीज तोड़ने के लिए, किसी की पतली कीड़े पकड़ने के लिए। ये अनुकूलन का, अडेप्टेशन का इतना साफ उदाहरण था। यही डार्विन के दिमाग में वो बड़ा सवाल कौंधा जिसने सब कुछ बदल दिया।
क्या सवाल?
कि क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत पहले कोई एक तरह की फिंच इन द्वीपों पर आई हो और फिर अलग अलग द्वीपों पर जो खाना मिला उसके हिसाब से उसकी चोंच धीरे धीरे बदलती गई और समय के साथ वो कई नई प्रजातियों में बढ़ गई।
ओह, यानी एक प्रजाति से कई प्रजातियां बनना।
बिल्कुल। यही पर वो प्रजातियों का रूपांतरण, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ स्पीशीज का आइडिया एक धुंधले ख्याल से एक वैज्ञानिक संभावना बनने लगा। जैसा उन्होंने खुद लिखा, ये जगह उन्हें उस महान रहस्य, पृथ्वी पर नए प्राणियों की पहली उपस्थिति के थोड़ा और करीब ले आई। ये सचमुच एक टर्निंग पॉइंट था।
गैलापागोस के बाद यात्रा पश्चिम की ओर जारी रही। बीगल ने प्रशांत महासागर पार किया, ताहिती, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया।
हाँ, और इन जगहों पर डार्विन ने सिर्फ प्रकृति नहीं बल्कि इंसानी संस्कृतियों का भी अध्ययन किया। वो ताहिती के लोगों की समझदारी से प्रभावित हुए। न्यूजीलैंड में माओरी और अंग्रेज उपनिवेशकों के बीच जो तनाव था उसे देखा।
और ऑस्ट्रेलिया में वो थैली वाले जानवर, कंगारू, प्लैटिपस।
हाँ, उन्हें देखकर वो फिर हैरान हुए, ये जीव दुनिया के बाकी हिस्सों से कितने अलग थे। ये सब उनके उस सवाल को और गहरा कर रहे थे कि कौन से जीव कहाँ क्यों पाए जाते हैं। और इस आखिरी हिस्से में डार्विन ने एक और बड़ा वैज्ञानिक योगदान दिया जिसका जिक्र अक्सर कम होता है।
अच्छा,
वो क्या था? वो था कोरल रीफ, यानी मूंगे की चट्टानों और एटॉल, वो गोल मूंगे के द्वीप, उनके बनने का सिद्धांत।
ओहो।
उन्होंने ये बिल्कुल सही पता लगाया कि एटॉल तब बनते हैं जब कोई ज्वालामुखी द्वीप धीरे धीरे समुद्र में धंसता जाता है और उसके किनारों पर मूंगे ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं, आखिरकार एक छल्ले जैसी रीफ बन जाती है।
वाह, ये तो अपने आप में बड़ी खोज थी।
बिल्कुल। ये सिद्धांत जिसने तीन तरह की रीफ को एक ही भूगर्भीय प्रक्रिया से जोड़ा, ये भूविज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी।
तो अंत में केप ऑफ गुड होप, सेंट हेलेना वगैरह से होते हुए लगभग 5 साल बाद अक्टूबर 1836 में बीगल इंग्लैंड वापस पहुंचा।
हाँ, और डार्विन अब वो 22 साल वाले नौजवान शौकिया प्रकृतिवादी नहीं थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सबूतों के पहाड़, सैकड़ों नमूनों और दुनिया को देखने के एक बिल्कुल नए क्रांतिकारी नजरिए के साथ लौटे थे। एक मंझे हुए वैज्ञानिक बन चुके थे।
तो अगर हम इस पूरी यात्रा और किताब से निकले मुख्य विचारों या संदेशों को समेटें तो क्या सामने आता है? मेरे ख्याल से पहला और सबसे बुनियादी सबक है वो डीप टाइम वाला, भूगर्भीय समय की विशालता।
हाँ, कि पृथ्वी बहुत बहुत पुरानी है।
बिल्कुल। डार्विन के अवलोकनों ने बार बार ये साबित किया, और ये लंबा समय जरूरी था जीवन को बदलने और विकसित होने के लिए।
सही।
और दूसरा बड़ा सबक है अनुकूलन, एडेप्टेशन। हाँ, जीव अपने माहौल में जीने के लिए कमाल के तरीकों से ढल जाते हैं, वो फिंच की चोंचे।
बिल्कुल, ये इस पुरानी सोच को सीधी चुनौती थी कि प्रजातियां भगवान ने जैसी बनाई हैं वैसी ही रहती हैं। हम इसे भारत में भी देख सकते हैं, रेगिस्तान में ऊंट, पहाड़ों पर याक।
हाँ, हर जगह अनुकूलन के उदाहरण हैं। तीसरा अहम पॉइंट है बायोजियोग्राफी और आइसोलेशन, यानी कौन सी प्रजाति कहाँ मिलती है और क्यों।
हाँ, वो भौगोलिक बाधाओं वाली बात, पहाड़, समुद्र।
बिल्कुल, और जब कोई आबादी बाकी दुनिया से कट जाती है, जैसे द्वीपों पर, तो वो अलग तरह से विकसित हो सकती है, नई प्रजातियां बन सकती हैं, जैसे अपने यहाँ पश्चिमी घाट या अंडमान निकोबार में कई एंडेमिक प्रजातियां हैं।
सही कहा। चौथा संदेश है विलुप्ति, एक्सटिंक्शन, कि प्रजातियां हमेशा नहीं रहती।
हाँ, पैटागोनिया के वो विशाल जीवाश्म इसका सबूत थे, और अक्सर उनकी जगह लेने वाली नई प्रजातियां उन्हीं की बदली हुई वंशज होती हैं। ये फिर से दिखाता है कि जीवन स्थिर नहीं है।
पांचवा है वो जुड़ाव वाली बात, इंटरकनेक्टेडनेस।
हाँ, प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, जमीन, पानी, जलवायु, पौधे, जानवर, एक चीज में बदलाव का असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। ये एक तरह की शुरुआती इकोसिस्टम सोच थी।
बिल्कुल, जैसे आज हम अमेज़न के जंगलों की बात करते हैं।
सही। छठा और शायद सबसे बुनियादी बारीकी से देखने की शक्ति, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
हाँ, डार्विन की पूरी वैज्ञानिक विधि इसी पर टिकी थी, धैर्य से देखना, नोट करना, सोचना।
बिल्कुल, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये हमें धीरज रखने और चीजों को गौर से देखने की अहमियत याद दिलाता है।
और सातवां, एक मानवीय पहलू, वो साझा मानवता और नैतिक दिशा।
हाँ, गुलामी के प्रति उनकी नफरत और फ्यूगियन लोगों के अनुभवों से उपजे उनके विचार। ये दिखाते हैं कि वो सिर्फ एक ठंडे दिमाग वाले वैज्ञानिक नहीं थे, उनमें गहरी मानवीय संवेदनाएं और एक मजबूत नैतिक विवेक भी था।
इस किताब में कई ऐसी बातें हैं जो सीधे दिल को छूती हैं या सोचने पर मजबूर करती हैं।
सही।
जैसे गैलापागोस के बारे में उनका लिखना, इन द्वीपों का प्राकृतिक इतिहास अत्यंत जिज्ञासु है और ध्यान देने योग्य है।
हाँ, उस वाक्य में ही वो चिंगारी महसूस होती है।
बिल्कुल,
जो आगे चल के इतनी बड़ी आग बनी।
और गैलापागोस पर ही उनका वो आश्चर्य कि इतने पास पास के द्वीप, जमीन जलवायु एक जैसी, फिर भी जीव अलग अलग क्यों, ये सोचना कि समान कारण हमेशा समान परिणाम क्यों नहीं देते, ये भौगोलिक अलगाव के असर को समझने की दिशा में बहुत बड़ा कदम था।
हाँ, ये सवाल पूछना ही अपने आप में क्रांतिकारी था।
और भूविज्ञान के महत्व पर उनका जोर, जैसे उनका कहना, भूविज्ञान समय की कुंजी रखता है। ये दिखाता है कि वो पृथ्वी के लंबे इतिहास को, जीवन के बदलाव को समझने के लिए कितना जरूरी मानते थे।
सही।
बिना धरती के इतिहास को समझे जीवन का इतिहास समझना मुश्किल था।
और गुलामी पर उनकी वो सीधी तीखी बात, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, मैं फिर कभी गुलाम देश का दौरा नहीं करूँगा, ये सोचकर खून खौल उठता है। ये उनके वैज्ञानिक नज़रिए के साथ साथ उनके गहरे नैतिक विश्वास को दिखाता है।
हाँ, और अंत में खुद डार्विन का ये मानना कि बीगल की यात्रा मेरे जीवन की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है और इसने मेरे पूरे करियर को निर्धारित किया है। ये दिखाता है कि ये 5 साल उनके लिए कितने निर्णायक थे।
तो इस सबसे हम आज क्या सीख सकते हैं?
हाँ,
पहला तो है डार्विन जैसी गहरी जिज्ञासा पालना, कभी भी क्यों पूछना बंद ना करना। अपने आसपास की दुनिया को, अपने काम को, समाज को एक बच्चे जैसी उत्सुकता से देखना।
बिल्कुल,
सिर्फ मान लेना नहीं, जानने की कोशिश करना। दूसरा, वो इंटरडिसिप्लिनरी सोच अपनाना।
हाँ, जैसे डार्विन ने भूविज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल सबको जोड़ा, आज भी बड़ी सफलताएं अक्सर वही मिलती हैं जहां अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञान को मिलाया जाता है।
सही। तीसरा, धैर्य और लंबे समय तक अवलोकन का महत्व। डार्विन का सिद्धांत रातों रात नहीं आया, वो सालों के धीरज भरे काम का नतीजा था।
हाँ, आज जब हमें हर चीज तुरंत चाहिए, ये याद रखना जरूरी है कि सच्ची समझ के लिए समय लगता है।
बिल्कुल। चौथा, नए सबूतों के आधार पर अपना मन बदलने को तैयार रहना।
हाँ, ये बौद्धिक ईमानदारी। डार्विन ने अपनी कई पुरानी धारणाएं बदली जब उन्हें उनके खिलाफ सबूत मिले।
पांचवा, प्रकृति और जैव विविधता की कद्र करना। डार्विन के वर्णन हमें याद दिलाते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी अद्भुत है।
हाँ, ये किताब पढ़कर प्रकृति के प्रति सम्मान और उसे बचाने की जिम्मेदारी का एहसास और गहरा होता है।
और छठा, क्रिटिकल थिंकिंग और बौद्धिक साहस, यानी सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय खुद सोचना, सबूतों को परखना।
और अगर जरूरत हो तो स्थापित मान्यताओं पर भी सवाल उठाना, भले वो मुश्किल लगे।
बिल्कुल। कुल मिलाकर द वॉयज ऑफ द बीगल से सबसे बड़ी सीख शायद ये है कि महान खोजें अक्सर नई चीजें देखने से ज्यादा जानी पहचानी चीजों को नए नजरिए से देखने से होती हैं।
हाँ।
ये किताब वैज्ञानिक सोच की पूरी प्रक्रिया का उत्सव है, जिज्ञासा, मेहनत, हिम्मत और दुनिया को देखकर हैरान होने की क्षमता।
हाँ, ये दिखाती है कि कैसे एक खुला और जिज्ञासु दिमाग रोजमर्रा के अवलोकनों को दुनिया को समझने के क्रांतिकारी तरीके में बदल सकता है। ये किताब डार्विन की महान कृति ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की अनिवार्य भूमिका है।
बिल्कुल।
ये हमें याद दिलाती है कि हर बड़े सिद्धांत के पीछे एक लंबी यात्रा होती है और हर बड़े जवाब से पहले हजारों छोटे मगर अहम सवाल होते हैं।
तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हम आज की दुनिया की जटिलताओं, चाहे वो पर्यावरण की हो, समाज की हो या हमारी अपनी जिंदगी की, को डार्विन की यात्रा वाली नजरों से देखें, मतलब जवाबों से ज्यादा सवालों पे ध्यान दें, बारीकी से अवलोकन करें और चीजों के बीच के कनेक्शन को समझने की कोशिश करें, तो क्या हमारे देखने और समझने का तरीका बदल सकता है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।